ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा बल्कि ये राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। कल गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में कल नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को तीनों सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्रा, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस बीच कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौते को रद्द कर दिया है। ये निर्णय पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन और आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की आलोचना के परिणाम स्वरूप आए हैं। तमिलनाडु में राज्य भाजपा इकाई ने कल तेनकासी, तिरुपत्तू, थूथुकुड़ी, वेल्लूर और थेनी जिलों में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैलियां आयोजित की। रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, पूर्व सैनिकों और युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने रक्षा बलों के गौरव और बलिदान का समर्थन करते हुए नारे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी रामभद्राचार्य और उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागरूक करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। ये गति 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें वृद्धि का अनुमान 6.4% है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की गई विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने मध्य प्रदेश में कर रही और सगमा के बीच 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली एक महत्वपूर्ण नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के तहत प्रस्तावित कार्ड रेल लाइन 5.31 किलोमीटर लंबी होगी। भारतीय जनसंचार संस्थान आगामी शैक्षणिक वर्ष से जनसंचार और पत्रकारिता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। संस्थान ने कार्यक्रम के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। प्रवेश विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 एक सप्ताह के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू होगा। मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में मोहाली और धर्मशाला में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश में मालदीव के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत के साथ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।